الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. بلکہ میں لسٹ سے ہم نے ایک نیا ٹاپک پہ گفتگو کرنی شروع کی، اور وہ ٹاپک ہے اصلاح نفس، خانقاہوں پر آنے کا مین جو مقصد ہے وہ اس نفس کی اصلاح ہے. تو کل کی مجلس میں ہم نے اس نفس کی اصلاح پہ گفتگو کرنا شروع کی، اور اس نفس کے بارے میں بتایا کہ یہ نفس جو ہے یہ انسان کے اندر یوں سمجھ لیں گویا کہ ایک اور انسان ہے. یہ اس کے اندر اس کی خواہشات کا مجموعہ ہے. انسان نیت بھی کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ نفس اسے نافرمانی پہ اکساتا رہتا ہے. کل کی مجلس میں ہم نے دو باتیں اور بھی بتائی، ایک یہ کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے، مگر ان دونوں کے حملے جو ہے یہ دونوں جو نافرمانی اللہ کی کرواتے ہیں ان میں بڑا فرق ہے. مشائخ نے فرمایا کہ شیطان کا وسوسہ ایسا کہ اگر اس کے وسوسے کو ریزسٹ کر لیا جائے تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوسرا کوئی وسوسہ ڈال دے. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی تو بد نظری کر لے، وہ تھوڑی دیر بچ جائے گا تو شیطان اس کو پھر چھوڑ دے گا اور اس کو کہے گا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر تو بیٹھ کے ذرا غیبت کر لے، وہ تجھے ذرا ہلکا گناہ لگے گا. تو جو گناہ آسانی سے انسان کر لے گا اس کی طرف شیطان اس کو کھینچ لے گا. نفس جو گناہ کی طرف بلاتا ہے اور نفس جو دشمنی کرتا ہے اس کا طریقہ واردات الگ ہے. وہ ایک ہی گناہ کو مزین کر کر کے دکھائے گا حتیٰ کہ انسان کو اس گناہ میں ملوث کر جائے گا. تو شیطان بھی دشمن اور نفس بھی دشمن، مگر مشائخ نے فرمایا کہ اس طریقہ واردات کی وجہ سے نفس جو ہے وہ زیادہ بڑا دشمن ہے. تو کل کی مجلس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ مشائخ نے نفس کی مثال جو دی ہے وہ ایک باغی گھوڑے کی ہے کہ جس گھوڑے کو ابھی تک سدھایا نہیں گیا ہو تو وہ اپنے مالک کے قابو میں نہیں آتا، نہ پیٹھ پہ ہاتھ رکھنے دیتا ہے نہ اس سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے. اور اس نفس کو سدھارنے کی ترتیب بھی پھر یہی ہے کہ اس کا کھانا پینا کم کیا جاتا ہے، اس نفس کو فیڈ کم کیا جاتا ہے، تو تھوڑا سا وہ کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بوجھ بھی رکھا جاتا ہے. پھر کچھ وقت بعد جا کے یہ گھوڑا جو ہے یہ کسی قابو میں آتا ہے، اور نفس کو سدھارنے کا بھی یہی حال ہے. تو مشائخ نے فرمایا کچھ کھانے پینے میں کمی کی جائے اور عبادت کا بوجھ ڈالا جائے. تو کچھ عرصے بعد یہ نفس جو ہے یہ انسان کے قابو میں آنے لگتا ہے. اس نفس کی اہمیت کیوں ہے؟ سوال ہے. اس نفس کی اہمیت اس لیے ہے، اور شاید ہم اس اہمیت کو اتنا نہ سمجھیں، مگر اس نفس کی اصلاح کیے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرماتے ہیں ذالک جزاؤ من تزکا، یہ جنت اس کی جزا ہے جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا ہے. बहुत सारे लोग इस नफ्स को नाम तज़किया है, नफ्स को कहते हैं जी ऑप्शनल चीज है, मगर इस प्रोसेस से जो गुजरेगा नहीं, जो अपने नफ्स को पाक नहीं करेगा, जन्नत से भी महरूम, हर तरह की कामयाबी से महरूम। قد أفلح من تزكى، अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि तहकीक कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। तो इसलिए ये जो इदारा है खानकाह जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे आने वाला जो है उसका तज़किया नफ्स जो है वो ही इस इदारे का काम है। शेख का जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना वो यही है कि वो तज़किया नफ्स के लिए बैठा है। वो के बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शेख के पास आएंगे तो शायद हमारी शादी जल्दी हो जाएगी या हमारी नौकरी लग जाएगी या और कोई काम, या बिजनेस में बड़ा कोई अच्छा मुझे मशवरा मिल जाएगा। ये काम मशाइख जरूर करते हैं कि शादी करवा देना या किसी को कोई अच्छा मशवरा दे देना, ये कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है, अच्छी नेकी का काम। मगर ये मशाइख के जॉब डिस्क्रिप्शन में मौजूद नहीं है। अगर वो ये वाला काम नहीं भी करते तो ऐसा नहीं कि वो ये नहीं कहा जाएगा कि वो अपना असल काम नहीं करते। असल काम जो करने का है वो यही है कि जो लोग मशायख के साथ इस्लाह का ताल्लुक कायम करते हैं उनकी नफ्स की इस्लाह करनी है, ये सीधा सीधा काम है। तो मशायख का काम, खानकाहों पे होने वाला काम, ये इस्लाह नफ्स है। इस नफ्स से मुतालिक गो के बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं, मगर एक अच्छी गुफ्तगू कुरान और हदीस में आती है। तो नाचे इस नफ्स की तीन किस्में कुरान पाक में बयान की गई है, जिससे पता चलता है कि नफ्स इंसान का एक पोजीशन पे नहीं रहता, उसकी ख्वाहिशात बदलती। यानी नफ्स को यूं समझें कि ख्वाहिशात का मजमुआ है। तो कोई बंदा समझ ले कि जी मेरी ख्वाहिशात तो अब बदल ही नहीं सकती, जो मेरी उल्टी ख्वाहिश है ये ऐसी रहेगी, तो ऐसा नहीं है। ख्वाहिशात बदलती है, इंसान ख्वाहिशात को दबाने वाला भी बनता है, इंसान ख्वाहिशात से मغلوب भी होता है। कुरान पाक से पता चलता है कि इंसान का नफ्स जो है बहरहाल उसको रोका जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसके अंदर चेंजेस आती है। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी वनहन नफ्स अनिल हवा इन्नल जन्नत ही है, कि जो अल्लाह के सामने खड़ा रहने से डर गया, उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से रोक दिया। इसका मतलब है कि इंसान के पास ये कंट्रोल है कि वो अपने नफ्स की इस्लाह, अपने नफ्स को गलत से निकाल के सही तरफ डाले, नफ्स को बगावत से निकाल के इताअत की तरफ डाले। मगर नेचुरली जो नफ्स अंदर मौजूद है वो बगावत वाला है। तो मशाइख ने, बल्कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन किस्म के नुफूस का तज़किरा फरमाया, और पहली किस्म जो है उसको कहते हैं नफ्स अम्मारा। और ये नफ्स अम्मारा क्या है? नफ्स अम्मारा कहते हैं बगावत वाले नफ्स को। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करता, नफ्स जो है वो बगावत की तरफ खींच गया। ये जो बगावत वाला नफ्स होता है, नफ्स अम्मारा होता है, आम तौर पे बहुत ही गाफिल मुसलमानों का नफ्स होता है, काफिरों का नफ्स होता है। और इस नफ्स की खासियत ये होती है कि ऐसा नफ्स अल्लाह की बगावत करता तो है, तो बगावत करके उसको मलामत भी महसूस नहीं होती है कि मैंने कोई गलत काम किया, बल्कि जो इन नफूस जो नफ्स की पैरवी नहीं कर रहे होते उन पर एतराज हो रहा होता है, उन पर नाराज हो रहा। जैसे मगरिब और मशरिकी दुनिया के अंदर या इस्लाम और मगरिबी दुनिया में ये इख्तलाफ, ये बहस चलती है कि जी आप लोग शराब क्यों नहीं पीते हैं? और आपकी औरतें घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? औरतें बेलिबास हमारी तरह हमारी औरतों की तरह क्यों नहीं होती? तो नाफरमानी भी है, मगर उस नाफरमानी पे जबरदस्त किस्म की एक ढिटाई भी है। उस नाफरमानी पे कोई शर्मिंदगी, उस नाफरमानी पे कोई मलामत नहीं है। तो नफ्स अम्मारा उस नफ्स को कहते हैं कि जो नाफरमानी भी करता है, उस नाफरमानी को सही भी समझता है, उस नाफरमानी पे कोई मलामत भी नहीं है। दूसरा नफ्स जिसका तस्करा कुरान पाक में आया है, उसको नफ्स लवामा कहते हैं, और ये है मलामत करने वाला नफ्स। और ये आमतौर पे मुसलमानों का नफ्स होता है, आम मुसलमान का नफ्स ऐसा है कि नाफरमानी तो करता है मगर उस नाफरमानी को बुरा समझता है, तो उसका दिल चाहता है कि जी मेरी नाफरमानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे नाराज ना हो, मगर क्योंकि उसके नफ्स की इस्लाह नहीं हुई हो इसलिए वो नाफरमानी करता भी है, अल्लाह से तौबा भी करता है, इस नाफरमानी पे परेशान भी होता है। तो इसको नफ्स लवामा कहते हैं, आम मुसलमानों का नफ्स ऐसा हो। और कुरान पाक में एक तीसरे नफ्स का तस्करा किया गया और उसको कहते हैं नफ्स मुतमाइन्ना, या अय्यतुहन नफ्स मुतमाइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राजियतन मरजी, ए नफ्स मुतमइन्ना लौट अपने रब की तरफ इस हाल में कि तेरा रब भी तुझसे राजी और तू भी रब से राजी। ये नफ्स जो होता है ये वो नफ्स है कि जिसके अंदर ख्वाहिश जो अब रह गई है वो वही है जो अल्लाह का हुक्म है, यानी नफ्स की इस्लाह होते होते नफ्स ऐसी पोजीशन में आ गया है कि नफ्स भी वही चाहता है जो अल्लाह का हुक्म है। तो ये भी थोड़ा सा नायाब है, आम बंदों में नहीं होता, अल्लाह वालों के नफूस ऐसे कि दिल की चाहत ही वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्म है। इसकी मिसाल आप यूं समझे कि एक बुजुर्ग थे, उनको किसी ने कहा कि हजरत हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि जन्नत के अंदर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, जन्नत के अंदर नमाज नहीं होगी। ये बात सुन के उनकी आंखों में आंसू आए कि जी अगर जन्नत में नमाज नहीं होगी तो फिर जन्नत में क्या होगा। तो नमाज के साथ इतना लगाव और इतना शगफ और इतना शौक और नमाज में इतनी लज्जत आती कि ये सुन के परेशान हो गए कि जी जन्नत में नमाज नहीं होगी। तो जब नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है तो अल्लाह की इताअत अल्लाह की इबादत इंसान का शौक बन जाता है। तो इस्लाह नफ्स का मकसद यही है कि नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमइन्ना की तरफ ले जाया जाए। और जब ये नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है तो फिर इबादत भी आसान हो जाती है, और अल्लाह के हुक्मों की फरमा बरदारी भी आसान हो जाती है। चुनांचे इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल, आपने फरमाया कि अब मेरे दिल की और कोई तमन्ना नहीं है सिवाय इत्तबाए सुन्नत के। मेरे दिल की अब और कोई तमन्ना नहीं है सिवाय इत्तबाए सुन्नत के। तो जब इंसान का नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है तो वाकयतन सही को सही समझने लगता है, गलत का गलत नजर आता है। इसलिए मशाइख की सोहबत में जो बड़ा काम करना है, खानकाहों पे आने का मकसद, अल्लाह वालों से बैत होने का मकसद वो यही है कि इस नफ्स की इस्लाह हो जाए। ये नफ्स वाकयतन चाहे कि मैं अल्लाह की इताअत करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.